नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहने के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग के बाद लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित की गई और फिर दिन में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य वापस सदन के बीच में आ गए और एसआईआर के खिलाफ नारे लगाने लगे। पीठासीन अधिकारी ने आग्रह किया। इसके बाद भी विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में जब पहली बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी सांसदों ने एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी और वॉकआउट कर दिया। इससे पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके बाद इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने जॉर्जिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। इस बीच संसद ने मणिपुर वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज सदन में ये विधेयक पेश किया। ये विधेयक मणिपुर वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए लाया गया है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को नए मुद्दे ढूंढने और संसद का कार्य बाधित करने की आवश्यकता नहीं है।
विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो ओपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे ये तो ठीक नहीं है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 68,393.67 करोड़ रुपए जारी किए हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि साइबर धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचार साथी ऐप लाया गया है। श्री सिंधिया ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से कहा कि इस ऐप में कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने मोबाइल से हटा सकता है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2,208 मतदान केंद्रों पर 100% गणना प्रपत्र जमा करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित कुछ प्रखंड विकास अधिकारी बूथ लेवल अधिकारी पर अपने ओटीपी साझा करने का दबाव बना रहे हैं ताकि मृतकों, विस्थापितों और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नाम मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल किए जा सकें। इस बीच आयोग के विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जनता, राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है। काशी तमिल संगमम का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण के बीच संबंधों को मजबूत करना है। रेलवे 4th काशी तमिल संगमम के लिए कन्याकुमारी, चेन्नई, कोयम्बटूर और वाराणसी के बीच 7 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। रेल मंत्रालय ने बताया कि ये रेलगाड़ियां कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों के लिए निर्बाध यात्रा और लंबी दूरी की यात्रा समय से आगमन सुनिश्चित करेंगी। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के पश्चिमी मध्य क्षेत्र, उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों पर कम हवा के दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। पिछले 6 घंटे के दौरान यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ेगा। इसके धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़कर उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।